नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाङ्गप्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चाद्देशपारिणे। जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। देर तक बैठने में पैर दुखने लग रहे हैं। श्लोक 22। आश्रुत्य तद ऋषिगण वचः परीक्षित। समं मधुचिर गुरुचा व्यलीकम्। आभासतैनामभिनन्द्ययुक्तान् शुश्रूषमाणाश्चरितान् विष्णुः समागतः सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रपृष्ठे नेहाथवामु तत् कश्चनार्थम् रीते परानुग्रहमात्मशीलम् ततश्च वः पृच्छमिमं विपृच्छे विश्रव्य विप्रा इति कृत्यतायाम् सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यम् शुद्धं च तत्रा मृषथा विजुक्तः आश्रुत्य तद् ऋषिगण वचः परीक्षित। समं मधुचिद् गुरुचा व्यलीकम्। आभासतैतान् अभिनन्द्य युक्तान् शुश्रूषमाणश्चरितान् विष्णुः तो कल इसके पहले की कथा हुई थी। महाराज परीक्षित अपना जब निश्चय सुनाए कि मैं भगवान की गाथा सुनना चाहता हूँ और शरीर त्यागना चाहता हूँ, आप सभी हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं जहाँ भी जन्म लूँ भगवान कृष्ण में मेरा प्रेम हो, भगवान के भक्तों का संग हो और सभी प्राणियों के प्रति मेरी मित्रता हो। महाराज परीक्षित की ये बात सुनकर देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे और वहां उपस्थित समग्र ब्रह्मर्षिगण महाराज परीक्षित को धन्यवाद देने लगे और उन्होंने ये भी कहा कि हे महाराज, जब तक आप यह शरीर त्याग कर भगवान के धाम चले जाते हैं तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। तो ऋषियों ने यह सूचित कर दिया कि महाराज परीक्षित निश्चित भगवान कृष्ण के पास जाएंगे। सत्यवादी और त्रिकालदर्शी ऋषियों का यह आशीर्वाद और भविष्य सूचक वचन सुनकर महाराज परीक्षित को बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। परीक्षित तद ऋषिगण वच आश्रुत्य, महाराज परीक्षित ऋषि समुदाय के इस वचन को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। जब ऋषियों ने कहा कि महाराज शरीर त्याग कर भगवान के धाम में जाएंगे तब तक हम लोग यहीं रहेंगे, ऋषियों की बात में चार गुण बता रहे हैं सुख जी, सम मधुचि गुरु और अव्यलीक। चार ब्राह्मणों की बातों की विशेषता है। समम का अर्थ है पक्षपात शून्य। ऋषिगण जो महाराज परीक्षित से बोले, आपस में निश्चय किए कि हम लोग यहीं रहेंगे जब तक महाराज शरीर छोड़कर वैकुंठ नहीं चले जाते हैं, उनके वचन में समता थी, पक्षपात नहीं था। यहाँ पक्षपात का अर्थ है फ्लैटरी। उनके वचन में, ब्राह्मणों के वचन में कोई फ्लैटरी नहीं थी, चपलूसी नहीं थी कि ऐसा कहेंगे तो राजा जी खुश हो जाएंगे। तो उनको प्रसन्न करने के लिए लोग नहीं कह रहे। इस संसार में जब कोई व्यक्ति किसी से बात करता है तो सोचता है कि सामने वाला खुश रहे हमसे, इसको फ्लैटरी कहते। महाराज परीक्षित के सामने जो ब्राह्मणों ने वचन कहा वो बिल्कुल पक्षपात सुनने था, महाराज को खुश करने के लिए नहीं बोल रहे, बिल्कुल सत्य बोल रहे थे। उनकी हार्दिक इच्छा थी उस स्थान पर वे रुके और महाराज परीक्षित का वैकुंठ गमन देखें। उनके वचन की विशेषता थी सामन। किसी भी वाणी का यह बहुत बड़ा गुण है। आज के युग में सामने तो लोग बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन तुरंत पीछे बुराई करना चालू कर दे। संसार का स्वरूप कलयुग में कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, ये हैं, वो हैं, और थोड़ा सा परोक्ष में होते हैं वो ऐसा है वैसा है। तो ऋषिगण महाराज परीक्षित की स्तुति नहीं कर रहे थे, फ्लैटरी नहीं कर रहे, शुद्ध मन से बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ रुकेंगे। और मधुच्यूत वाणी का दूसरा विशेषण था, विशेषता थी मधुच्यूत। ब्राह्मणों के वचन से मधु चू रहा था। जिस वाणी में यह निकले कि आप भगवान के धाम में जाएंगे तो कितना मधुर वचन है यह, मधु चू रहा गुरु। और गुरु का अर्थ गंभीरार्थम, गंभीर वचन था, बहुत आशय था ब्राह्मणों के वचन में। गुरु का यह अर्थ है कि हम लोग बहुत बड़े लाभ के लिए यहाँ रुकना चाहते हैं। महाराज परीक्षित का वैकुंठ गमन देखेंगे और इस अवसर पर जो भगवान श्री कृष्ण की कथा होगी उसका श्रवण करेंगे, गुरु का यह अर्थ। वो जो वचन बोल रहे थे तो अपने परम लाभ के लिए बोल रहे थे। और अव्यलीक, अव्यलीक का अर्थ है निष्कपट, निष्कपट बोल रहे थे। ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ और बोले, भीतर कुछ और सोचेंगे कि हाँ दो दिन रहेंगे इसके बाद चले जाएंगे, ऐसा नहीं, निष्कपट भाव से बोल रहे थे, बाहर भीतर बिल्कुल सम होकर, उनके हृदय में जो निश्चय था उसी को व्यक्त कर रहे थे। तो ब्राह्मणों की वाणी की ये चार विशेषता शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं। स समम मधुच्युत गुरु च अव्यलीकम। इन ब्राह्मणों के वचन को सुनकर महाराज परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए और उन भक्तों को जिनको युक्त कहा गया है, वे ब्राह्मण सभी भगवान के भक्त थे, उनको फिर से उन्होंने प्रणाम किया और उनसे इस प्रकार कहा। महाराज परीक्षित की इच्छा क्या थी, इस पर सूत जी कहते हैं, सुश्रुषमाण चरितानि विष्णु, विष्णु चरितानि सुश्रुषमाण। उनके जीवन में केवल एक ही लालसा थी, विष्णु के चरितों को सुनने की। सुश्रुषमाण श्रवण के इच्छुक थे। क्या सुनना चाहते थे? विष्णु चरितानि, विष्णु के चरित्र को, भगवान की लीलाओं को सुनना चाहते थे। इसके पहले भी उन्होंने कहा था, गायत विष्णु गाथा। और सूत गोस्वामी अपने आंख से महाराज परीक्षित को देखे थे, जिसमें महाराज परीक्षित बैठे थे कथा में, तो सूत गोस्वामी भी बगल में बैठे थे, तो वो सब जानते हैं महाराज परीक्षित कैसे पूछे, सुखदेव गोस्वामी क्या बोले। सुश्रुष मार सुनने की लालसा थी। किसी भी व्यक्ति के बड़प्पन का महत्व का यह सूचक है, वह व्यक्ति कितना भगवान कृष्ण के बारे में सुनना चाहता है। सुनने की लालसा सबको होती है, लेकिन संसार की वार्ता सुनने की इच्छा होती है, किसी को धन की वार्ता, किसी को पॉलिटिक्स की वार्ता, किसी को सोशल बात अच्छी लगती है, किसी किसी को बहुत इंद्रिय तृप्ति की बात अच्छी लगती है। जिसको जैसी बात अच्छी लगती है वह वैसा ही है। भगवान गीता में कहे हैं, यो यच्छ्रद्धा स एव स, श्रद्धा मयोयम पुरुष यो यच्छ्रद्धा स एव स। जिसकी जहां पर श्रद्धा है वह व्यक्ति वही है। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति की भूत में श्रद्धा है, तो वो व्यक्ति स्वयं ही भूत है। ये भगवान गीता में कहते हैं, यो यत् श्रद्धा स एव स। यदि किसी की भगवान में श्रद्धा है तो वह व्यक्ति भगवान जैसा है, मतलब उसमें बहुत गुड क्वालिटीज रहेंगे। और किसी व्यक्ति की बहुत बड़े झूठे में कपटी में श्रद्धा है तो स्वयं भी वैसा ही। श्रद्धा अपने भाव के अनुसार ही किसी व्यक्ति में होती है। तो श्रद्धा का अर्थ लालसा, वासना। महाराज परीक्षित एक सम्राट थे, उनको कोई कमी नहीं थी। वे चाहते तो मृत्यु का प्रतिकार भी कर सकते थे। जिस व्यक्ति पर ब्रह्मास्त्र चला था जीवन के शुरू में, असहाय अवस्था में गर्भ में थे, उस समय ब्रह्मास्त्र से वो बच गए, भगवान ने उन्हें बचाया, तो इस समय तो प्रार्थना कर सकते थे भगवान से। बिना प्रार्थना के भगवान कृष्ण ने गर्भ में इनकी रक्षा किया था, इस समय तो प्रार्थना कर सकते थे कि हे प्रभु हम जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, लेकिन उनकी इच्छा नहीं। वो भगवान की लीलाओं को सुनकर भगवान की डायरेक्ट सेवा में जाना चाहते थे। अब जीवन में अंतिम साध थी कि अपने प्रभु के श्री कृष्ण के चरित्र को सुन करके जाए। तो सुश्रुष मानस चरिता ने विष्णु, तो ब्राह्मणों का स्वागत कर रहे हैं और उन्हें कथा कहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सबसे पहले उनके ज्ञानाति सहायता का वर्णन कर रहे हैं, आप सभी परम ज्ञानी हैं, वेद को जानने वाले हैं, और इसके बाद उनके कृपा का वर्णन कर रहे हैं। समागतः सर्वतएव सर्वे वेदा जथा मूर्ति धरा त्रिपृष्ठे नेहाथवा मूत्र च कश्चनात्म रीते परानुग्रहमात्मशीलम्। जैसे त्रिपृष्ठे तीनों लोकों के ऊपर सत्य लोक में वेद मूर्तिमान रहते हैं, वैसे आप लोग मूर्ति धरा वेद। ब्रह्मा जी के लोक में वेद पुराण इतिहास ये सब जितने ग्रंथ हैं ये सब देवता के रूप में मूर्तिमान रहते हैं। ग्रंथ के रूप में वहां नहीं रहते हैं। यहाँ हम लोग जैसे बुक के रूप में देखते हैं, वहां पर देवता के रूप में वेद शास्त्र रहते हैं मूर्तिमान। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि त्रिपृष्ठ है, जैसे ब्रह्मा जी के लोक में सत्य लोक में वेदा जथा मूर्ति धरा है, वेद बिल्कुल मूर्तिमान होते हैं, वैसे आप सब मूर्तिमान वेद हैं। मतलब वेदों का ज्ञान आपको बहुत है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस श्लोक के आधे में ब्राह्मणों के ज्ञानातिशयता का वर्णन किया गया, बहुत ज्ञान है, और आधे में वर्णन कर रहे हैं कि आप बहुत कृपालु, बहुत कृपा है आप में। नेहा थवा मूत्र कंचनार्थम रूते परानुग्रह मातृशीलम, आप लोगों का स्वभाव है परानुग्रह, दूसरे पर अनुग्रह करना। जो शुद्ध महात्मा होते हैं वास्तव में उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता है, दूसरे का दुख मिटाना, दूसरे को सुखी करना, वे इसके लिए घुमा करते हैं, और बाकी संसार के लोग अपने लिए घुमा करते हैं, दूसरे के लिए नहीं घूमते। हमारा कहाँ पर प्रयोजन सधेगा, हमको कहाँ कुछ मिलेगा, खाने को चाहे पैसा मिलेगा, चाहे जॉब मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, देख रहे सारे वाइवान भरे जा रहे हैं। गाड़ियों पर, एक कार पर लोग भरे जा रहे हैं, यहाँ से वहां हजार 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 भागे जा रहे हैं। तो लक्ष्य क्या है? परोपकार लक्ष्य नहीं, अपने स्वार्थ के लिए सब इधर उधर दौड़ रहे। परंतु महाराज परीक्षित के पास जो ब्राह्मण आए हुए हैं, उन्हें वास्तव में बुलाया नहीं गया था, वे स्वयं आए हैं, लेकिन क्या सोच करके आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं? परानुग्रहम, वहां पर तो वे आए हैं वास्तव में भगवान की कथा सुनने के लिए, लेकिन जब भी ये लोग चलते हैं तो दूसरों के हित के लिए चलते हैं। महाराज परीक्षित यह कह रहे हैं कि हमारे हित के लिए आप आए हैं, आप भगवत तत्व को जानने वाले हैं, वेद शास्त्र जानने वाले हैं, आप लोगों का अपने आश्रम से इधर उधर जाना अपने लिए नहीं होता है, दूसरों के लिए होता है। यह बात नंद बाबा ने भी कहा है गर्गाचार्य से। आप देख सकते हैं संसार में सभी लोग घूमते हैं कभी ना कभी, लेकिन उन घूमने का, उनके घूमने का जो प्लान बनाते हैं उसके पीछे क्या रहस्य होता है, क्यों जाते हैं? बहुत कम लोग ऐसे संसार में हैं जो ये सोच करके जाते हैं कि हम वहां जाएंगे तो उनका हित करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इस संसार में कुछ ऐसा देखा जाता है, कुछ डॉक्टर है लगता है कि दूसरे का हित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो भी ऐसे नहीं है, वो अपना क्लिनिक खोल करके वो अपना हित कर रहे हैं, और चाहते हैं कि रोग बढ़े और रोगियों की संख्या आवे हमारे दफ्तर में, है ना? ऐसा नहीं है, नहीं मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन जनरली देखेंगे कि ऐसा वो बोलते हैं कभी कभी, सबकी बात में नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा है संसार में। इसीलिए क्लिनिक खोल करके बैठा हो आदमी कि हम दूसरे का ही हित करें, ये करें, कम से कम पैसा लें, तब माना जाएगा कि हाँ ठीक है ना। ये महात्माओं का वर्णन किया जा रहा है, जो शुद्ध चरित्र वाले हैं, भगवान के भक्त हैं, वे दूसरों के हित के लिए ही घूमते हैं, यहां तक कि कष्ट सह करके भी घूमते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद 69 वर्ष की अवस्था में भारत छोड़ करके प्रभुपाद जी अमेरिका में आए, क्या उनका क्या स्वार्थ था, यहाँ क्या करने के लिए आए? उनको कहा जाता है परानुग्रह आत्मशीलक, दूसरे पर अनुग्रह करने के लिए आए। जब कई लोग मना कर रहे थे, नहीं नहीं आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन वे आए, और आ करके उन्होंने वास्तव में इस पश्चात देश का भाग्य पलट दिया। इंग्लिश भाषा बहुत गरीब भाषा है स्पिरिचुअल फैक्ट के विषय में, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने वैदिक ग्रंथों को इंग्लिश में देकर इंग्लिश को धनी बना दिया। नहीं तो ये इसमें तो प्रभुपाद के पहले कुछ था ही नहीं, रियली कुछ भी नहीं था, इसमें कोई रियलाइजेशन नहीं है भगवान का, कुछ भी नहीं। प्रभुपाद जी के द्वारा प्रथम बार इंग्लिश में इतना समृद्ध ज्ञान प्राप्त किया, इंग्लिश भाषा में भागवत आया, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंध। उसी प्रभुपाद जी जैसे महात्मा के लिए कहा जा रहा है कि आपके जीवन में दूसरे पर कृपा करने के अलावा और कुछ नहीं। रीते परानुग्रह आत्मसिंह न कंचन अर्थम, और कोई उद्देश्य नहीं होता है महात्माओं का, दूसरे का हित करना ही उद्देश्य होता है। ततश्च वह पृच्छ निमन विपृच्छे विश्रभ्य विप्रकृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणश्च कृत्यम शुद्धम च तत्र मृषता विजुक्ता। इसलिए मैं आप सबके प्रति पूर्ण विश्वास करके, विश्रभ्य पूर्ण विश्वास करके, पूर्ण समर्पण करके मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। पृच्छ्यम इमं विपृच्छे प्रष्टव्यम पृच्छे, मैं पूछने योग्य बात पूछ रहा हूं। यहां से महाराज परीक्षित का प्रश्न प्रारंभ हो रहा है। पृच्छ्यम इमं विपृच्छे, यह पूछने लायक बात मैं पूछ रहा हूं। महाराज परीक्षित अनुभव कर रहे हैं कि मैं फालतू नहीं पूछ रहा, पूछने योग्य पूछ रहा। इमं पृच्छ्यम विपृच्छे, जिसे पूछना चाहिए, गुरुजनों से बड़े लोगों से पूछना चाहिए, इस विषय में मैं पूछ रहा हूं। मैं इतिकृत्यताया, मनुष्य का क्या कर्तव्य है इसके विषय में मैं प्रश्न करना चाहता हूं। कृपा करके बताइए कि मनुष्य को सभी अवस्थाओं में क्या करना चाहिए। सर्वात्मना, सर्वात्मना का अर्थ है सर्वावस्थासु मनुष्याणाम जत कृत्यम तत्र अभिमृशत्व ब्रूहि। किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में मनुष्यों का कर्तव्य क्या है, कृपया बताइए। और म्रियमाणश्च, और यह भी बताइए कि जो लोग बिल्कुल मृत्यु के निकट हैं उनका क्या कर्तव्य है। दो प्रश्न है। मनुष्यों का सभी स्थान पर, सभी काल में, सब स्थिति में क्या कर्तव्य है, और विशेष करके जो आसन्न मृत्यु है, जिनकी मृत्यु निकट आ चुकी है, उनका क्या कर्तव्य है। तत्र अभिमृशत विचारयत, आप विचार कर लीजिए आप सभी लोग, और हमें कृपा करके बताइए। यह प्रश्न सुनकर आपस में ऋषिगण विचार करने लगे। विचार कर रहे थे तो कुछ भनभन भनभन की आवाज आने लगी। कुछ लोग कहते थे कि महाराज को दान देना चाहिए, इस समय दान से बहुत सदगति होती है। जेन केन विधिदीन है दान करई कल्याण, दान से कल्याण होता है। कुछ लोग कहते थे कि इनको बहुत दान देना चाहिए, इससे परलोक सुधरेगा। कुछ लोग कहते थे कि इनको यज्ञ प्रारंभ करना चाहिए। कुछ कहते थे कि इनको और तीर्थों में घूमना चाहिए। कुछ कहते थे कि अब ब्रह्म चिंतन करना चाहिए। कुछ कहते थे अष्टांग योग करना चाहिए। आपस में जो भी साधन वो लोग ठीक समझते थे कहते, कोई कहते थे इनको तप करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जब कोई एक पॉइंट पर ऋषि लोग नहीं आ रहे थे, जबकि महाराज परीक्षित ने स्पष्ट कहा कि आप लोग भगवान की गाथा गाइए, सुश्रुत मानस चरिता निविष्म, महाराज को संदेह नहीं था, चाहते थे कि ये लोग कथा कहे। जब आपस में ऋषि लोग विचार कर रहे थे, उसी समय श्रील सुखदेव गोस्वामी आए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो जगरी छया गामत मानो न बेच्छ अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्ट वृतश्च बालैरवधूत वेश। तत्र व्यास पुत्र भगवान अभवत, व्यास देव के पुत्र सर्वज्ञ परम भागवत श्रील सुखदेव गोस्वामी तत्र अभवत, वहीं आ गए। अभवत का अर्थ प्रकट नहीं हो गए, आए। लोगों ने देखा कि सुखदेव गोस्वामी आ रहे हैं, तो वो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि सब आए थे, वे लोग तो तुरंत पहचान गए कि सुखदेव गोस्वामी आ गए। कैसे थे, कैसे आ गए, क्या इन्विटेशन से आए? कह नहीं, जगृच्छया, किसी को पता भी नहीं था, अपने आप आ गए। यहाँ जगृच्छया का अर्थ है भगवद इच्छया। भगवान श्री कृष्ण ने, जो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है, उन्होंने प्रेरणा दिया महाराज सुखदेव गोस्वामी को, प्रेरणा दिया जगृच्छया। और जगृच्छया के दो अर्थ है, एक तो बिना किसी पूर्व सूचना के और दूसरा बिना किसी इच्छा के। ऐसा नहीं था कि उनका कोई आश्रम ठप पड़ा था, डोनेशन मांगने चल दिए, ऐसा नहीं था। जगृच्छया का अर्थ बिल्कुल संकल्प शून्य, चल रहे हैं घूमते हुए आगे। और भगवत कृपा थी, महाराज परीक्षित का परम सौभाग्य था कि इस अवसर पर सुखदेव गोस्वामी आ गए। जगृच्छया का यह भी अर्थ भगवत कृपया। कैसे आ गए? गाम अटमान, पृथ्वी पर पर्यटन करते हुए आ गए, घूमते हुए आ गए। गाम मतलब पृथ्वी, अटमान पर्यटन, ऐसे घूमते रहते थे, घूमते घूमते आ गए। कोई पहले से प्लान नहीं किए कि गंगा जी के तट पर चले, वहां परीक्षित महाराज बैठे हों, कोई ऐसा उनका प्लान नहीं। अच्छा, अनपेक्षा, किस लिए आए, किस अपेक्षा से आए? कोई अपेक्षा से नहीं, अनपेक्षा, किसी से उनकी कोई इच्छा नहीं रहती थी। सुखदेव गोस्वामी कौपीन तक नहीं पहनते थे, तो इच्छा क्या करेंगे? हमको भोजन मिले, अकोमोडेशन मिले, और ये मिले, वो मिले, डॉलर मिले, इसकी उनको कोई अपेक्षा नहीं, कुछ भी नहीं। जो व्यक्ति कौपीन तक नहीं पहनता, तो पैसा रखने आदि की तो बात ही क्या है, और पर्स रखना, ये करना, वो करना, तो बहुत दूर की बात। इस तरह से अनपेक्षित भगवान की भक्ति से पूर्ण तृप्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। वास्तव में यह एक अद्भुत सुख है। सुखदेव गोस्वामी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वे संसार के उन लोगों से बहुत सुखी हैं जिनके पास सब कुछ है। दुख में मरते हैं, अंततः जीव की यही स्थिति होनी चाहिए, कुछ भी नहीं हो और अपने आत्मा के, भगवान कृष्ण के चिंतन से तृप्त हो, सुखी अवस्था है, परम सुखी। अनपेक्षा अलक्ष लिंग, सुखदेव गोस्वामी कब कुछ पता नहीं चल रहा था कि गृहस्थ हैं कि ब्रह्मचारी हैं कि वानप्रस्थी हैं कि सन्यासी हैं। यहाँ लिंग का अर्थ है आश्रम का कोई चिन्ह नहीं। सन्यासी का भी कुछ लक्षण होता है, गृहस्थ का होता है, इनका तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं पता चल रहा था। कोई नहीं कहता कि ये सन्यासी है कि वानप्रस्थी है कि क्या है, गृहस्थ होने का तो कोई सवाल ही नहीं। इस तरह से तो गृहस्थ चलेगा नहीं, कोई गृहस्थ मंग धड़ंग थोड़े घूमेगा कहीं, वैसे थे कुछ पता नहीं चल रहा। अथवा एक भागवत कहने वाले कह रहे थे कि कौपीन पहन लिए थे, इसलिए इनका लिंग दिखाई नहीं पड़ रहा है, अलक्ष लिंग। ठीक ही कि वो ये अर्थ कर रहे थे अपनी इच्छा से, लिंग का अर्थ है आश्रम के चिन्ह, ये सब कुछ नहीं पता चल रहा था। निजलाभ तुष्ट, बिल्कुल संतुष्ट, भगवान कृष्ण के भक्ति से बिल्कुल तृप्त थे। वृतस्थ बालय अवधूत वेश, वृतस्त्री बालय अवधूत, यह भी पाठ भेद है। कुछ बच्चे घेर करके उनको आए थे और स्त्रियां भी थी, खास करके हस्तिनापुर से जब निकल रहे थे गंगा के तट पर आने के लिए, तो कुछ बच्चे देखे, बच्चों का कौतूहल होता ही है, ये 16 वर्ष का लड़का ऐसे नग्न क्यों घूम रहा है। स्त्रियां पूछने लगी, तुम्हारा कहाँ घर है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा एड्रेस क्या है। और सुखदेव गोस्वामी कुछ नहीं बोलते थे, भगवान नाम और भगवत कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बच्चे बुलवाते थे, ए तुम्हारा कहाँ घर है, कहाँ गांव है। सुखदेव गोस्वामी कुछ नहीं बोलते थे, तो वो लोग आपस में कहते थे, गुंगा है गुंगा है, ए सुनो। तो उधर ध्यान नहीं देते थे, तो वो कहते तो बहरा है, और अंधे जैसे भी अपने को दिखाते थे, जड़ बिल्कुल। तो कुछ स्त्रियां कहती थी, ओहो देखो कितना सुंदर लड़का है, लेकिन विधाता ने पागल बना दिया, कितना सुंदर शरीर है, लेकिन दिमाग बेचारे का काम नहीं कर रहा, बताओ माता पिता को भी छोड़ दिया, कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है, कोई इसका लक्ष्य नहीं। लोग घेर करके चल रहे थे, बच्चे बुलवाना चाहते थे, कहाँ जाना चाहते हो, हम तुमको पहुंचा देंगे, क्या नाम है। वो तो बस मन ही मन भगवान कृष्ण का चिंतन कर रहे थे, और बीच बीच में महामंत्र का उच्चारण करते थे। यही सुखदेव गोस्वामी का काम। स्त्रियां बेचारी बहुत तरस खा रही थी, देखो इतना अच्छा लड़का लेकिन पागल बना दिया ब्रह्मा ने। तो इस तरह घेर करके लोग आ रहे थे। तम दुष्ट वर्ष, 8 दिन 16 वर्ष के थे, 16 वर्ष के बच्चे जैसे, अभी भी सुखदेव गोस्वामी उतनी ही उम्र के रहते। दुष्ट वर्ष, सुकुमार पाद करोड़ बावन कपोल गात्र, बहुत सुंदर हाथ पैर कपोल गाल जत्रु सब कुछ, और बहुत सुंदर बड़ी बड़ी आंखें, उन्नत नासिका, कान शुभ्रु आनंद, और उनका कंठ शंख के समान था, बहुत सुंदर, भगवान कृष्ण जैसा सुंदर सुखदेव गोस्वामी लगते हैं। पर भगवान कृष्ण तो वस्त्र अलंकार धारण करते हैं, ये बिल्कुल नग्न रहते हैं, ये इनकी विशेषता है। निगूढ़ जत्रु, जत्रु का था हसली, यह हसली बिल्कुल ढके हुए थे, दुबले नहीं थे, बिल्कुल स्वस्थ थे। पृथुतुंग वक्षस, छाती चौड़ी थी और ऊंची थी, इस तरह के सुखदेव गोस्वामी का शरीर, इस प्रकार का शरीर अच्छा माना जाता। ऐसा नहीं कि छाती बिल्कुल छोटी सी हो और पेट इतना बड़ा निकल गया हो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी का वर्णन कर रहे हैं सूत जी कि पृथुतुंग वक्षसम, पृथु का अर्थ चौड़ा, छाती चौड़ी थी और ऊंची थी, आवर्त नाभि, और नाभि में जमुना जी के भंवर जैसा आवर्त था, बलिबल्बु दरंत, और पेट नीचे की तरफ पतला था सुखदेव गोस्वामी, और उस पर त्रिवली बनी हुई थी। त्रिवली का अर्थ है कि पेट पर निशान बना हुआ, पेट बिल्कुल एज इट इज था, तो पेट का निशान बंद हो जाता है जब, जैसे जैसे मेद बढ़ता है बल पेट फूलता है, तो त्रिवली रेखा समाप्त हो जाती। हमने एक किताब में पढ़ा था, प्राकृतिक चिकित्सा की किताब, उसमें लेखक 3 प्रकार के शरीर का चित्र बनाया था, 3 प्रकार का शरीर, एक स्वस्थ शरीर और एक बहुत मोटा, एक बहुत पतला। तो जो पतला शरीर था बिल्कुल, तो वहां लिखा गया था लकीर चंद। वो भी लेखक भी विनोद में लिखा था, बिल्कुल पतला शरीर जिसका, वो लकीर चंद है, लकीर माने रेखा, लकीर चंद। और बीच में जिसका शरीर ठीक था उसको सुदेह शर्मा लिखा, सुदेह शर्मा मतलब सुंदर देह वाले शर्मा, सुदेह शर्मा। और जो बहुत मोटा था उसको भोंदू मल लिखा था। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी सुदेह शर्मा बिल्कुल बहुत सुंदर। ब्रह्म सत्सेभ्यः छत्रबन्धवः कृपया तिथिरूपेण भवद्भिः तीर्थकाकृतः। महाराज परीक्षित करते हैं, हे ब्राह्मण मेरा अहो भाग्य है, आज मैं ऐसा हूं कि मेरे पास संत आए हैं, भगवत भक्तगण मेरे पास आए हैं और उस पर भी आप अतिथि के रूप में बिना मेरे आमंत्रण के बिना सूचना के आप जो मेरे पास आए, वास्तव में आप लोगों के आने से मैं तीर्थ जैसा हो गया, मेरा पाप तो कट ही गया, मैं दूसरों का पाप काटने में समर्थ हूं, तीर्थ का कृपा, मैं इतना पवित्र अपने को अनुभव कर रहा हूं कि मैं ही तीर्थ हो गया, आप लोग अपनी उपस्थिति से हमें धन्य कर दिए, मेरा हो भाग्य। और एक सिद्धांत कह रहे हैं कि जैसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृह किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचनाशनम्। आप जैसे महात्माओं का यदि केवल चिंतन किया जाए अपने घर में बैठ करके, जैसा संस्मरणार्थ आप जैसे महात्मा का यदि चिंतन केवल किया जाए तो गृहस्थ का घर पूरा पूरा पवित्र हो जाता है, शुद्ध्यन्ति वै गृह। अगर एक व्यक्ति किसी एक संत का चिंतन कर रहा है तो उसके घर में रहने वाले उसकी पत्नी बच्चे भाई सब पवित्र हो जाते हैं, ये इसका अर्थ है। सभ्य शुद्ध्यंत वही गृह, व्यक्ति का शुद्ध होना तो आसान है लेकिन पूरे परिवार का शुद्ध हो जाना ये कुछ कठिन होता है। लेकिन भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त का कोई चिंतन करे स्मरण करे तो उसे घर के उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं परिवार के सब पवित्र हो जाते, सद्य तत्काल शुद्ध हो जाते। तो जिन संतों के स्मरण से गृहस्थों के घर पावन हो जाते हैं तो फिर किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि, फिर यदि उस साधु के दर्शन का सौभाग्य मिले और दर्शन के बाद उसके चरण छूने का सौभाग्य मिले, दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी चरण धोने का और आसन पर बैठाने का कुछ खिलाने का पिलाने का सौभाग्य मिले तो गृहस्थों का घर क्यों नहीं पवित्र हो जाएगा। केवल स्मरण करने से घर पवित्र हो जाता है तो दर्शन स्पर्श करने से क्यों नहीं पवित्र हो जाता, क्यों गृहस्थों का घर पवित्र होता है किसी साधु के स्मरण से? क्योंकि साधु के हृदय में भगवान रहते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव प्राण, भक्तों के हृदय में गोविंद रहते हैं, कृष्ण रहते हैं और कृष्ण जहां रहते हैं वहां विद्या नहीं टिक सकती है। वह भक्त परम पावन होता है वो साधु जिसके हृदय में भगवान रह रहे हैं, तो भगवान की उपस्थिति के कारण उस साधु का सम करने वाले लोग भी पवित्र हो जाते, इस तरह से पवित्र होते हैं। भागवत में कथा है कि जब ध्रुव महाराज तपस्या करके लौट रहे थे मधुबन से अपने गांव पर जहां उनके पिताजी उत्तानपाद रहते थे, तो यह बात सब जगह फैल गई थी कि ध्रुव भगवान विष्णु का स्पर्श करके लौटा है, भगवान को छू करके लौटा है, सब जगह ही बात फैल गई। भगवान का दर्शन तो किया ही है, भगवान को छू करके आया, भगवान का चरण कमल छू करके आया है। तो महाराज उत्तानपाद अपने पुत्र की अगवानी कर रहे थे, जब मिलने गए तो ध्रुव को अपने अखबार में भर करके राजा उत्तान पर मिल रहे थे और बार बार ये सोच रहे थे कि मेरा बेटा भगवान को छू करके आया है, तो मैं इसको छू करके परम पावन हो जाऊं। तो ध्रुव भगवान को छू करके आए, तो ध्रुव को छू करके मैं पवित्र हो जाऊंगा, ये सोच रहे थे, बारंबार ऐसे आलिंगन कर रहे थे। तो चलिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं देख रहे हैं, भगवान को नहीं छू रहे हैं, तो भगवान को देखने वाले छूने वाले वैष्णवों को छूना चाहिए। इस तरह से वो करंट आता है, ये परंपरा। एक बार एक विनोद में एक भक्त कथा कह रहे थे, जाड़े का दिन था, तो एक व्यक्ति स्नान करके आ रहा था गंगा जी से, दूसरा व्यक्ति ठंडा के मारे कांप रहा था, उसको नहाने की इच्छा नहीं थी, स्नान करने की इच्छा नहीं थी। तो वो सोचा कि मैं कैसे पवित्र होऊंगा, तो गंगा स्नान करके जो आ रहा था उसको छू करके कहता है, तुम स्नान मैं स्नान, तुम स्नान मैं स्नान, आपका स्नान हो गया मेरा स्नान हो गया। इस तरह से बार बार कहता था, तो उसको अब दूसरे लोग छूने लगे, तो ठीक है तुम स्नान मैं स्नान, तुम स्नान मैं स्नान, इसको परंपरा कहते हैं आज तक। भगवान को देखा है बड़े बड़े आचार्यों ने, भगवान से मिला है, छुआ है, बात किया है, तो उनको छू करके, उनको देख करके, उनकी बात सुन करके भगवद अनुभव होता है, भगवान का अनुभव मिलता है, सत्य बात। इसी कारण से साधु अपने उपस्थिति मात्र से गृहस्थों के घर को पवित्र कर देते हैं। अपने घर पर साधुओं को बुलाना, सत्कार करना, प्रणाम करना, ये गृहस्थों का सहज धर्म होना चाहिए। जैसा संस्मरणात् पुंसाम सभ्य शुभ्यंति वही गृह किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। फिर किसी शुद्ध साधु के चरण में प्रणाम करने का अवसर मिले, चरण धोने का अवसर मिले, आसन पर बैठाने का, दर्शन करने का, ये सब तो बहुत बड़ा भाग्य। महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी और अन्य सबके लिए कह रहे हैं कि आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से गृहस्थों के घर पवित्र हो जाते हैं, अर्थात बच्चा भी पवित्र हो जाता है, स्त्री भी, माता पिता भी, सब पवित्र हो जाते हैं। एक आदमी भजन करता है और पवित्र सब लोग होते हैं, यह स्वाभाविक है। कभी कभी हम लोगों ने देखा, अगर घर में एक व्यक्ति चोर निकल जाए, पुलिस उसको पकड़े, तो बाद में घर के लोग भी संकट में पड़ जाते हैं। अब एक को पकड़ करके ले गया तो पिताजी जाएंगे छुड़ाने के लिए, तो ये वो नाना प्रकार का संकट होता है। गलती एक किया है लेकिन पूरा परिवार सफर करता है। हमें विपरीत उदाहरण दिया, तो इसी तरह से कोई एक व्यक्ति शुभ कर्म कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उसके चलते सारा पवित्र, सारा वंश पवित्र हो जाता है। भगवान नृसिंह देव ने प्रहलाद महाराज से कहा कि तुम्हारे वंश के 21 पीढ़ी के लोग तार गए। प्रहलाद महाराज भगवान से विनय कर रहे थे, हमारे पिताजी बहुत खल थे, आपको बहुत गाली दिए, और मैं आपका भक्त था, मुझको बहुत सताए, वो दुर्गति में पड़ जाएंगे, नरक में गिरेंगे, आप माफ कर दीजिए मेरे पिताजी को। तो भगवान ने कहा कि अरे बेटा, तुम्हारे जैसे पुरुष भक्त जिस परिवार में जन्म लेते हैं तो उसका 21 पीढ़ी का तरण हो जाता है, तुम्हारा पिता तो दूसरी ही पीढ़ी, और वो भी मैं अपने हाथों से मारा। भगवान कहते मदंग स्पर्श मात्र है, मेरे श्री विग्रह का स्पर्श हुआ है मरते, और रात दिन मेरा चिंतन किया, तुम इस वंश में जन्म लिए हो तो 21 पीढ़ी के लोग तर गए, तुम चिंता मत करो, हिरण्यकश्यप की चिंता मत करो, नरक में नहीं गिरेगा। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि किसी परिवार का एक व्यक्ति भी भगवान कृष्ण की भक्ति करे और किसी साधु के संपर्क में हो, तो उस घर के सभी लोग परम पवित्र हो जाते हैं, उनका अपराध पाप सब नष्ट हो जाते, केवल स्मरण मात्र से। अपने ऑफिस में बैठ करके या घर में कोई याद कर दे किसी साधु का तो सब पवित्र हो जाते हैं। और फिर दर्शन स्पर्श पाद शौचासनाद भी किम वक्तव्य, तो फिर क्या कहना। सानिध्याते महाजोगिन पातकानि महान कपि सद्यो नश्यन्ति वैपुंसाम विष्णुरिव सुरेतरः। हे महायोगिन, हे परम भगवत भक्त, आप जैसे साधु के सामने बड़े से बड़े पाप अपराध उसी तरह से नष्ट हो जाते हैं जैसे भगवान विष्णु के सामने असुर नष्ट हो जाते हैं। विष्णु के सामने असुर नहीं टिक सकते हैं, कितना भी बलवान हो, अरे हिरण्यकश्यपु नहीं टिक पाया, क्षण भर में भगवान ने चीर कर फेंक दिए, राम और इत्यादि नहीं टिक पाए। तो ये बड़े बड़े पाप दुष्कर्म बड़े बड़े दैत्य के समान है, कैसे नष्ट होते हैं। सानिध्याते महाजोगिन महा पातकानी महान्ति अपि, महान से महान अपराध पाप सब साधु के दर्शन से नष्ट हो जाते, उनके सामने टिक नहीं सकते। जैसे विष्णु और सुरेतरा, सुरेतरा मतलब सुरों से भिन्न, देवताओं से भिन्न असुर जैसे नहीं टिक पाते हैं विष्णु के सामने, वैसे बड़े बड़े पाप नहीं टिक सकते। जीवन में अपराध तो हो ही जाता है, पाप तो हो ही जाता है, लेकिन पाप काटने का एक सबसे अच्छा उपाय है साधुओं की संगति, और साधुओं के संग में कृष्ण कथा सुनना, इससे पाप नष्ट हो जाता है। और अब कह रहे हैं कि अपि मे भगवान प्रीतः कृष्णः पांडुसुतः प्रियः। मैं समझ रहा हूं मैं पांडवों के वंश में जन्म लिया हूं, मैं महाराज युधिष्ठिर का पौत्र हूँ, अर्जुन का पौत्र हूँ, और भगवान श्री कृष्ण मेरे पितामहों से बहुत प्रेम किए, बहुत प्रेम किए, और मैं उनके वंश में हूँ इसलिए हमसे भी प्रेम कर रहे हैं। आज मेरे मृत्यु के समय शरीर त्यागने के अवसर पर आपका आना मेरे पास सिद्ध कर रहे हैं कि भगवान हमसे बहुत प्रेम कर रहे हैं, नहीं तो मैं तो आप जानता भी नहीं था कि आप कहाँ हैं, किस वन में हैं, किधर हैं, क्या हैं। मैं चाहता भी कि आपको बुलाऊं तब भी नहीं पा सकता था, लेकिन आज मेरे जीवन के अंत में आप मेरे पास आए हुए हैं, यह निश्चित भगवान कृष्ण का प्लान है, उन्होंने आपके हृदय में प्रेरणा देकर के भेजा। भगवान जैसे हमारे पितामहों से प्रेम किए, मैत्री किए, स्नेह किए, तो उनके वंश में मैं जन्मा हूं इसलिए मुझसे भी स्नेह कर रहे हैं, मतलब अर्जुन की भक्ति के कारण मुझसे स्नेह कर रहे हैं। पैतृश से प्रत्यर्थन तद गोत्र स्यात बांधव, पैतृश वस्त्रेय, अपने पिता की वाहन के पुत्रों से भगवान प्रेम किए। पैतृश स्वस्त्र, स्वसा का अर्थ होता है वाहन, अपने पिता की वाहन कुंती महारानी, और कुंती महारानी का पुत्र होने के कारण हम लोगों से भगवान ने प्रेम किया, पांडवों से प्रेम किया, अपने फुफेरे भाइयों से भगवान ने इस तरह प्रेम किया। तो तद गोत्र से आत बांधव, मैं उसी गोत्र का हूं इसीलिए भगवान मेरे प्रति बंधुता दिखा रहे, अन्यथा ते व्यक्तिगत दर्शनम न कथम निर्णाम मित्रा म्रियमाणा नाम संसिद्ध से बनी। यदि भगवान कृपा करके आपको यहाँ नहीं भेजे होते तो आपका दर्शन कभी नहीं हो सकता, भगवान कृष्ण की कृपा से दर्शन हुआ है, और वो भी मित्रा म्रियमाणा नाम संसिद्ध से बनी। आप परम सिद्ध हैं, आप परम महान हैं, उदार हैं, आप जैसे महात्मा का दर्शन होना म्रियमाण दशा में, ओहो मेरा कितना बड़ा भाग्य है, और इसी से मैं अनुमान करता हूं कि भगवान कृष्ण मुझसे पूर्ण स्नेह करते हैं, वे अपने धाम में मुझे बुलाना चाहते हैं, इसके लिए वे आपको भेजे। इसके द्वारा ऐसा सिद्ध होता है कि भगवत कथा सुनने का अवसर मिले तो मनुष्य को सोचना चाहिए कि यही उसके जीवन का सबसे बड़ा फॉर्चून है, सबसे बड़ा सौभाग्य है। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के जानकार हैं पूर्णतः, तो अब तो भागवत की कथा होगी ही, इसलिए महाराज परीक्षित बहुत प्रसन्न है। मैं भगवान कृष्ण को धन्यवाद दे रहे हैं। तो अब प्रश्न कर रहे हैं, फिर पहला जो प्रश्न किए थे फिर उसको क्लियर कर रहे हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः हे योगियों के परम गुरु, हे समस्त भक्तों में प्रधान, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, क्योंकि पता नहीं आप कब चले जाएंगे, इनको एक डर है, कहीं रुकते नहीं है, बहुत जल्दी चले जाते हैं, इसलिए मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं। योगिनां परमं गुरु, योगियों के भगवत भक्तों के आप सबसे श्रेष्ठ गुरु। मेरा प्रश्न ये है कि पुरुष से अजत कार्य मृय मानस सर्वथा, पुरुष का सर्वथा क्या कर्तव्य है? किसी पुरुष का, मनुष्य का किसी भी अवस्था में, सब समय, किसी भी परिस्थिति में क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न ये है मृय मानस जत कार्य, जो व्यक्ति मृत्यु के बिल्कुल निकट आ गया है उसको क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत का प्रश्न बिल्कुल क्लियर है, कोई व्यक्ति सावधानी से सुने पढ़े तो समझ जाएगा। क्या इस प्रश्न को समझने में कोई कठिनाई है कि मनुष्य को सभी अवस्था में, चाहे रात दिन, न चाहे 2004 में या 5 में, 2003 में या जनवरी में, फरवरी में, किसी भी काल में, किसी भी स्थान में, चाहे शिकागो में, लंदन में, दिल्ली में, कहीं भी, क्या करना चाहिए? किसी भी दशा में मनुष्य का क्या कर्तव्य है? सभी दशाओं में क्या करने के लिए मनुष्य शरीर है, क्या करना चाहिए? और जो व्यक्ति व्यक्ति बिल्कुल मृत्यु के निकट है उसको क्या करना चाहिए? श्रील सुखदेव गोस्वामी को समझ गए प्रश्न, फिर भी रुके हुए थे उत्तर देने, तो महाराज परीक्षित उसको और क्लियर कर रहे हैं। जत श्रोतव्यम अथो जाप्यम, जत कर्तव्यम निर्भी प्रभो, स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूही जद्वा विपर्ययम्। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो सभी स्थिति में मनुष्य को और मरणासन मनुष्य को भी क्या सुनना चाहिए? जत श्रोतव्य, जो सुनना चाहिए वो बताए, क्या सुनना चाहिए उसको? या सुनने योग्य सारी बातें सुनाइए, इसका अर्थ ये है सुनने जो बात है उसको सुनाइए। जस श्रोतव्य, इसका अर्थ है कि मनुष्य शरीर मिला है सुनने के लिए, कि पहला पहला वाक्य सिद्ध कर रहा है। जस श्रोतव्य, जो सुनने लायक है, अथो जाप्यम, और जो जप करने लायक, किस बात की बार बार आवृत्ति करनी चाहिए? जिस बात की आवृत्ति की जाती है उसको जप कहते हैं। जप कर, क्या अधिक से अधिक मनुष्य बोले, इसका उत्तर तो अब आएगा बाद में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? और जत कर्तव्य, इंद्रियों से, हाथ से क्या करना चाहिए? निर्भी प्रभु, मनुष्यों के द्वारा ये सब क्या कर्तव्य है? मनुष्य क्या सुने, क्या बोले, क्या करे? स्मर्तव्यम, मन से क्या स्मरण करे? भजनीयम, व किसका भजन करे, किसकी शरण ले? और गुरु ही जदवा विपर्य, इसके उल्टा भी बताइए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसका स्मरण नहीं करना चाहिए और किसका भजन नहीं करना चाहिए, ये भी बताइए। गुरु ही जदवा विपर्य, विपर्य का अर्थ उल्टा। केवल यही नहीं पूछ रहे कि किसका भजन करना चाहिए, ये भी पूछ रहे किसका नहीं करना चाहिए, भी बताइए किसका नहीं करना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं याद करना चाहिए? बिल्कुल क्लियर प्रश्न। इसी प्रश्न पर पूरा श्रीमद् भागवतम आधारित है, इसी प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत में दिया गया है। जीवन का वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी स्थितियों में मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसका उत्तर आएगा इसी कथा में। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य शिक्षितार्थ। भगवान हरि का स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, और किसी का नहीं। ये सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, उत्तर विस्तार से आएगा। तो प्रश्न को हम लोगों को समझ लेना चाहिए। सुनने के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है, और देखिए प्रत्येक मनुष्य सुनता रहता है। सबसे ज्यादा मनुष्य कौन काम करता है? सुनता है। भले वो कंडम शब्द सुनता रहता है, देखता है, देखने से ज्यादा सुनता है। टीवी पर भी केवल देखे और आवाज ना आए तो आदमी उठ जाएगा, है ना। कभी कभी ऐसे गूंगे दो दृश्य दिखाते हैं वो लोग कि आवाज नहीं आती, तो आदमी देखना नहीं चाहता है, भले आवाज चाहिए। हम विमान में देखते हैं, विमान वाले देते हैं ईयरफोन कि तुम लगा करके सुनो, केवल देख कर संतोष नहीं, सुन रहा, भर रहा है कान में आदमी दुनिया की बात। जब से जन्म हुआ है तब से तो सुन ही रहा है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, वहां सुनता है, भरता है, इधर भर रहा है, कान में भर रहा है। इसके लिए कान नहीं है, इसमें भगवान कृष्ण के जस को भरना चाहिए। भगवान की कथा, भगवान का गुण, भगवान की लीला श्रीमद् भागवत में है और अन्य ग्रंथों में। महात्माओं के मुख से अपने कान में भरना चाहिए भगवान की लीलाओं को, इतना भरना चाहिए कि दूसरी वार्ता को इसमें आने का समय ही ना मिले। एक श्लोक में जट भरत जी ने कहा है, जत्रो तमो श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विधात। इतनी भगवान की वार्ता फैले कि संसारिक ग्राम्य वार्ता या शिकागो वार्ता कान में जाए ही। ये तो सब जगह है, लेकिन शिकागो न्यूज तो ये न्यूज, ये न्यूज हजारों पत्र पत्रिका एक शहर में निकल रहे हैं, है ना। एक शहर का समाचार देने के लिए कान में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मॉर्निंग न्यूज, मिड डे न्यूज, इवनिंग न्यूज। मॉर्निंग न्यूज क्या? मरने का न्यूज है बस, मॉर्निंग न्यूज नहीं। तो क्या सुनकर करेंगे? हमने तो एक जगह सुना कि कुछ लोग फ्री ही फेंकते जाते हैं सवेरे न्यूज पेपर है, किसी किसी घर फ्री फेंकते जाते, सवेरे सवेरे वही काक वेद पढ़ते, कौओं का वेद, न्यूज पेपर, ये वो। तो जीवन तो जा रहा है, भगवान को कब समझेंगे? संसार को समझने में तो कान का पूरा पूरा प्रयोग कर दिए, दुनिया को समझने में फिर भी नहीं समझ पाए। तो भगवान को समझने के लिए कान का इस्तेमाल करना, इसको श्रोतव्य कहते हैं। महाराज परीक्षित जीवन का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं, क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या मन से स्मरण करना चाहिए, और किसका भजन करना चाहिए, किसकी शरण लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी देवी देवता की शरण ले ले, भूत प्रेत की या किसी लीडर की शरण ले ले, नहीं नहीं, भगवान की शरण ले। तो ये जीवन का प्रश्न है, बहुत सुंदर। दो ही श्लोक में प्रश्न है और इस पर पूरा श्रीमद् भागवतम टीका है, श्रीमद् भागवतम ही उत्तर है इस प्रश्न का। यदि सुखदेव को समझिए कहें कि किसी और विषय से पूछ लीजिएगा या बाद में पूछिएगा, तब कहते हैं नूनम भगवतो ब्रह्मन गृह सुगृह में अधिना न लक्षते यवस्थानम अपि गोदोहनम क्वचित। हे ब्रह्मन, हे सर्वज्ञ, हमने सुना है कि कभी कभी तो आप गृहस्थों के घर पर गोदोहन काल भी नहीं रुकते हैं, कभी कभी गोदोहन तक रुकते हैं। गोदोहन का अर्थ होता है एक गाय के दुहने में जो समय लगता है उसको गोदोहनम कालम कर। तो सुखदेव गोस्वामी जब जाते थे गृहस्थों के यहाँ कभी कभी, तो गाय दुही जाती थी तो उसको देखते थे, गाय का दुहा जाना देख करके इनको भगवान कृष्ण की गोकुल की लीला याद आ जाती थी कि भगवान ऐसे गाय दुहते, तो उसको एक ट्रक को देखते रहते थे और गाय का दुहना बंद होता था बस चलते थे। गृहस्थों के घर पर बस उतने देर रुकते थे, ज्यादा देर नहीं रुकते थे। एक साधु कथा कह रहे थे तो कहते थे कि सुखदेव गोस्वामी और कुछ भी नहीं खाते थे, कभी कभी दूध पीते थे तो गाय का दुहना देख करके खड़े हो जाते थे। गाय का दुहना पूरा होगा तो कुछ दूध मिलेगा पी करके चल, हाथ में लेकर के इतना ही पी कर चल रहे। नहीं ऐसी बात नहीं, उनका स्पिरिचुअल शरीर है, दूध के लिए खड़े नहीं होते थे। वो तो भगवान कृष्ण की गोदोहन लीला में आविष्ट रहते थे इसलिए खड़े रहते। हमारे परिचित कहते हैं कि जनरली तो आप गोदोहन काल रुकते हैं लेकिन कभी कभी नहीं रुकते, मतलब बहुत कम देर रुकते हैं। इसीलिए मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, हमें सुनाइए। इस प्रकार जब सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया तो उनके प्रश्न का अभिनंदन किया सुखदेव गोस्वामी ने और उनसे इस प्रकार कहना प्रारंभ किया, जो वक्तव्य दूसरे स्कंध से प्रारंभ किया जाएगा। श्रील सुखदेव गोस्वामी का उत्तर बहुत सुंदर हुआ है, तो इस प्रश्न को समझ लेना चाहिए। जो व्यक्ति प्रश्न को अच्छा से समझेगा वही उत्तर को भी ठीक से समझ पाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दीक्षा का आयोजन होता है उसे भी करना है, यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। हरे कृष्ण।